शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ते लोलुप्त महामोहतमस्तो मम जयति यद प्रकाशयत् जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयम् महा परमानंद सुधारस पिपासितानां चिताय भव्यानां क्रियते प्रकटित तत्त्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम् एष सुरासुर मनुसिन्धवन्दिनम् दोदगायिकम् अमलम् प्रणमामि वढ्यमाणम् तीर्थम् धम्मस्य कर्तारम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक को स्वरूप जान रावित भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को धन्य धन्य तुम हित काज सब आज भरे कर जोरी बार बार मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जानी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जानी।
47 नयों के प्रकरण में चार नयों का जोड़ा सुबह अपन ने प्रारंभ किया है, एक नियति नय और एक अनियति नय, जिसमें नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव की बात है और एक स्वभाव नय और अस्वभाव नय है। गजब की बात यह है कि नियति में भी स्वभाव की बात है, इसमें भी स्वभाव की बात है, फर्क क्या पड़ा? इसमें ये बताना है कि नियत नय से जो निश्चित एक रूप ध्रुव स्वभाव है वो बदल नहीं सकता, संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। ये इसमें मुख्यता इस बात की है, हाँ स्वभाव नय में पर परिणति से अप्रभावित हूँ, है ना, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो परिणति से अप्रभावी पना यही स्वभाव नय की बात है। फिर भी वर्तमान पर्याय में हमारे परिणाम अच्छे रहें इसके लिए हम सत्संग करें। संस्कार कोई दूसरों में ही डाले जाते हैं ऐसा नहीं है, अपने परिणामों की धारा पलटने का विकल्प आत्मार्थी जीव को भी आता है, फेरफार करने का नहीं। मैं फेरफार कर सकता हूँ ये मान्यता नहीं, लेकिन मेरी ऐसी परिणति हो जावे कि राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना ही, ऐसा है ना। वो श्रीमद जी ने देखो आप ऐसा पूर्व अवसर कब आएगा जब मैं निर्ग्रंथ होकर के बाह्य आभ्यंतर निर्ग्रंथ होके वन में विचरूंगा, तो मुनि दशा की भावना भाई कि नहीं भाई? तो ये भावना भाना ये संस्कार है, समझ में आया? अब इसमें समझने की बात यह है कि वो भावना के निमित्त से वो जैसा हम चाहते हैं वैसी पर्याय हो ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, होने वाली होगी। तो इस भावना को, संस्कार को, प्रयत्न को, सत्संग को, तत्व विचार को निमित्त कहा जाएगा, भूत निगम ने पर्याय तो अटल अपनी जगह है बिल्कुल। ये बात है भाई। अब दूसरे दो जोड़ों की बात चलती है, काल नय और अकाल नय। इस विषय में सामने वालों की तरफ से, सामने वाले मतलब जो गुरुदेव से सम्मति नहीं रखते हैं, असहमति हैं, तो वो क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में अकाल मृत्यु और अकाल नय इन दो बातों की चर्चा करते। बहुत सुंदर अर्थ गुरुदेव ने इसमें किया है, पढ़े विचारे समय दे रहे तो सब रहस्य खुल जा रहे हैं। सीधे ही मतलब बिना पढ़े विचारे बस अकाल ने काय के लिए लिखा है। अकाल ऐसा लगता है कि जैसे कि वो काम जब होने वाला था तो हमने मेहनत करके उसको पहले कर दिया। इसमें दुनिया पुरुषार्थ की सफलता मानती है। यह मतलब अनुकूल जैसा जगत में सहज परिणमन चल रहा है उसमें तो पुरुषार्थ निष्फल दिखता है। अब एक मान लो आप बॉम्बे एक ड्राइवर एक टैक्सी करें और यहाँ से 4 घंटे में बॉम्बे पहुंचा दें, वो कह साहब थोड़ा इनाम दो 100-200 रुपए आप हमने आपको चार घंटे तो लगते ही उसमें हर आदमी पहुंचा दे, तुमने क्या किया उसमें। और अगर वो 2 घंटे में पहुंचा देवे तो हाँ ये समझदार ड्राइवर है। तो जो 4 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय करे वो मूर्ख है कि समझदार है। कितनी रिस्क लेके जा रहा है जान और माल की, समझ में आए ना। तो हमारी कल्पना ही ऐसी विचित्र है कि हमें कोई कार्य, एक तो हमें पता नहीं कौन सा कार्य कब होने वाला है, हमने अपनी कल्पना में ही निश्चित कर रखा है कि अभी होना चाहिए, और फिर वो थोड़ी देर पहले हो जावे, कुछ समय पहले हो जावे तो हमने मेहनत की, हमारा पुरुषार्थ उस समय पे हो गए तो हमें पुरुषार्थ नजर नहीं आता। ये एक विपरीत कल्पना है। गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे इसमें स्पष्टीकरण किए हैं। देखिए पेज नंबर 47 पर। अच्छा, इसमें जो नयों में उदाहरण दिए हैं तो एक धर्म को समझाने के लिए कोई अलग चीज का उदाहरण, जैसे स्वभाव नय को समझाने के लिए वो जंगल में जो कांटे उत्पन्न होते हैं उसका उदाहरण, वो स्वभाव से कुदरती, और अस्वभाव नय को समझाने के लिए फिर उसका उदाहरण नहीं दिया, फिर दूसरा उदाहरण दिया, लोहार की द्वारा जो बाण में नोक बनाई जाती है उसका उदाहरण दिया। तो दो क्यों समझाने के लिए तो उदाहरण देना है ना, जबकि होता यह है सिद्धांत में कि एक ही वस्तु में वही समय स्वभाव नय है वही समय अस्वभाव नय है, समझना ये चीज है, लेकिन वो उसका स्वरूप क्या है उस धर्म का उसके लिए वो अलग अलग उदाहरण देते है। जैसे काल नय अकाल नय में देखिए आत्मद्रव्य काल नय से गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है। तो आत्मा की सिद्धि यानी उसके कार्य सिद्धि, उसके प्रयोजन की सिद्धि उसके समय पर होवे स्वकाल में होवे ऐसी योग्यता वाला है उसका नाम क्या है, काल नय। ये स्वभाव है त्रिकाली। क्या बोला, काल नय में काल की बात नहीं है, स्वकाल में सिद्धि होवे ऐसा स्वभाव है। समझ में, ऐसा स्वभाव है। और अभी अभी थोड़ा समझने की बात, अकाल नय से कृत्रिम गर्मी में पकाए गए आम्र फल के समान, तो दो आम अलग अलग हो गए, एक डाली में पकने वाला उसमें काल नय समझाया और उतार के उसको पहले निकाल के और गर्मी में पका लिया समय के पहले उसमें अकाल नय समझाया। तो दुनिया को ऐसे लगता है हाँ ये बात सही है, देखो अपन अपन अपने पुरुषार्थ से उसको समय के पहले भी तो पका सकते हैं ना, लेकिन जब वो पका है तब उसका समय पकने का नहीं था, ये तुमने कैसे नक्की किया है। मैंने इसमें ये पॉइंट लिखे हैं थोड़े, देखिए भगवान आत्मा में कार्य की सिद्धि समय पर आधारित हो अर्थात समय की मुख्यता से हो ऐसी योग्यता है जिसे काल धर्म कहते हैं। और ध्यान देना, काल के अतिरिक्त अन्य समवायों की प्रधानता से कोई कार्य जो काल नय से स्वकाल में हुआ है उसे ही स्वभाव की मुख्यता से और होनहार से अथवा निमित्त की मुख्यता से उसी कार्य का वर्णन किया जाए तो उसमें अकाल नय लागू हो जाएगा। पांचों समवायों को ले लिया, काल नय में काल वाला और अकाल नय में बाकी के 4 समवाय। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, ऐसा लगता है आप खींचतान करके अपनी मर्जी का अर्थ निकाल रहे हो, आप क्रमबद्ध पर्याय वाले हो इसलिए उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, जिसमें साफ साफ लिखा है अकाल नय का मतलब क्या है, हम अपने मेहनत से उसको पहले कर ले। आप देखो, अच्छा एक कोई कोई आदमी बीमार हो गए और डॉक्टर कहेगा 8 दिन ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओ। सीजनल बीमारियां होती हैं, वायरल वगैरह फीवर। एक काम करो, आप डबल खा लो वो दवाई। उसने कहा सुबह शाम एक एक गोली खाना, हम सुबह शाम दो दो गोली खा लो तो चार दिन में ठीक हो जाएंगे कि नहीं? अपनी मेहनत से ठीक ही हो जाएंगे फिर। ऐसे ही ओके, किसान ने खेती में वो समझ लो गेहूं बोए और फिर खाद पानी देता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, सफाई करता है, सब कीट पतंगों से रक्षा, मेहनत करता है, प्रसाद करता है, व्यवहार की भाषा है वो। फसल पकड़े में किसान का योग और उपयोग निमित्त है, पुरुषार्थ नहीं, ये समझना। खैर, तो अगर वो दूना पानी डाल दे रहे, डबल खाद डाल दे रहे, तो चार महीने के बजाय दो महीने में फसल पकेगी कि नहीं पकेगी? मतलब क्या क्या हिसाब किताब है। अरे कुदरत में जो कार्य प्रणमन की वस्तु की व्यवस्था है, परिणमन तो उसी हिसाब से ही होगा। आप अपने संकल्प विकल्प कैसे ही करें, बहुत मार्मिक बात है। जैसे ये कहा ना सम्यक्त वस्तु, वो चौथी गाथा की टीका में आया ना, चौथे कलश की टीका में, काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय करे तो भी साध्य सिद्धि नहीं होती। इसलिए सम्यक्त वस्तु सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। अभी चार दिन पहले पांच दिन पहले यहाँ गुरुदेव का व्याख्यान चलता था, तो उसमें गुरुदेव ने कहा सहज इतने पुरुषार्थ, ऐसा सहज का अर्थ उन्होंने पुरुषार्थ किया है। वो संदर्भ की बात अलग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ करोड़ों उपाय करें, ये समझ लो एक समझाने के लिए लौकिक भाषा का प्रयोग है। करोड़ों उपाय माने पुरुषार्थ, जिस कार्य की काल लब्धि नहीं आई है, उस काल का उस कार्य का पुरुषार्थ हो सकता है क्या? होगा ही नहीं, तो किसका होगा? जो कार्य होने वाला होगा उसका होगा। बात समझ में आई है? जब आपके तत्व निर्णय की योग्यता है तो आप तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करेंगे, जब और मोह मंद होने की योग्यता का सुकाल है परिणामों में है, दर्शन मोह तो निमित्त है, तो आपका परिणमन वैसा होगा तो पुरुषार्थ भी वैसा होगा। एक बात समझ लेना, पुरुषार्थ जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पावर, वैसा एक अमूर्तिक तत्व जैसा है। वैसे तो आत्मा के सभी परिणमन अमूर्तिक हैं, लेकिन पुरुषार्थ कोई अलग से कोई उसका कार्य नहीं दिखेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी एक करंट है, एक पावर है, वो पंखे में आती है तो हवा देती है, एसी में जाती है तो ठंडी हवा देती है, हीटर में जाती है तो गर्म हवा देती है, पंप में जाती है तो पानी ऊपर से, मतलब हर जिस मशीन में जाएगी उस मशीन में वो पावर काम करेगा। ख्याल में आए? पेट्रोल जिस गाड़ी में डालोगे, जिस उसके योग्य मशीन में डालोगे, उतनी स्पीड से वो चलेगी। ऐसे जो पुरुषार्थ यानी जो बल प्रयोग है, तो जो कार्य होने वाला जिस गुण में है वो उसी गुण के अनुरूप उसी का बल प्रयोग होगा। और अपन जो बाह्य प्रयत्न कहते हैं उसके लिए लौकिक भाषा में कोशिश करना, तो जो कार्य होने वाला है कोशिश भी उसी दिशा में होती है। वो एक कार्य का है समंत भद्राचार्य की, शायद स्वामी स्तोत्र में है, यादृशी जायते है ना, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय आपी तादृशा सहाया तादृशा भवंती यादृशी भवितव्यता, और अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा। ये सब मालूम पढ़ो, बहुत मजा आती है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने न्याय शास्त्र को भी अध्यात्म में ढाल के कितने बढ़िया ढंग से समझाया।
इसको सभी पाक अभी पाक
जाते हैं। वो उसमें ये उदाहरण दिया, सभी पाक अभी पाक के लिए जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ काल ने अकाल ने के लिए दिया है। अभिपाक भी ऐसा कहते हैं कि समय के पहले कर्मों को खिरा देना। तुमने कल्पना कर रखी है कि ये समय में खिरेगा, केवली के ज्ञान में तो जब खिरा है तभी वो जाना गया है। मैं एक सही घटना बताता हूँ। जब मैं शुरू में सोनगढ़ में परिचय में आया और इससे अभ्यास किया, तो हमारे बड़े भाई साहब हैं जबलपुर में, उनकी शादी हुई, तो जो ससुराल पक्ष के लोग थे वहां तो समझ लो दूसरी सब धारा चलती है, तो गुरुदेव का तो वहां नाम निशान उस समय था ही नहीं, वो बहुत कोई जानते ही नहीं था ज्यादा। धीरे धीरे मैं तो शादी के पहले ही मैं वहां दशलक्षण में प्रवचन करने गया था उस गांव में, तो जब शादी होने के बाद में वो हमारे भाई साहब के साले साहब इतने बड़े गंभीरता से उन्होंने पूछा, पंडित जी अकाल मृत्यु मानते कि नहीं मानते आप? अकाल मृत्यु माने काल के पहले मृत्यु, मरना था 80 साल में और मर गए 50 साल में तो अकाल मृत्यु हो गई। मैंने कहा अकाल मृत्यु किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं ये समझने समझाने का अभी मुझे टाइम नहीं है, आप जिसको कहो वो ही अकाल मृत्यु सही, केवल ही भगवान जानते कि नहीं जानते, इतना मुझे बता दो कि ये आदमी का एक्सीडेंट होएगा, ये आदमी को फलाना आदमी जहर दे देगा, ये आदमी आत्महत्या कर लेगा, जो भी निमित्त आप खड़े करते हो होते हैं जगत में, वो केवली के ज्ञान में जानी गई है, वो घटना में नहीं जानी गई। तो अकाल मृत्यु भी स्वकाल में ही होती, समझ में आया ना है? अब अनपवर्त आयु कही है तत्वा सूत्र में, कही है उससे कहां इनकार करते। हाँ देखिए काल ने के लिए डाली पर प्राकृतिक रूप से पकने वाले आम का उदाहरण दिया, यद्यपि उसमें भी वृक्ष को सींचना, राकेश जी डाली पे जो पका है क्या उसमें प्रयत्न नहीं है? वृक्ष को सींचना, खाद आदि देना इत्यादि प्रयत्न किए जाते हैं, पर इन्हें गौण करके काल की मुख्यता से कहा गया है कि आम अपने समय में पका, पकाने में तुमने कुछ नहीं किया, पकाने के लिए नहीं किया, जो रूटीन का काम है वृक्ष को सींचना इत्यादि वो किया। अब अकाल ने को समझाने के लिए कृत्रिम गर्मी से पकाने वाले आम का उदाहरण दिया गया है, कृत्रिम गर्मी में रखे गए आम एक साथ नहीं पकते, आगे पीछे पकते हैं, इससे सिद्ध इसका मतलब समझे आप? आपने एक वृक्ष की डाली में से 50 आम नीचे उतार लिए, वो कच्चे थे या चीकू मिलते ना हेल में आए ना पीछे की बाड़ी में, तो उसको आप अगर पेपर में लपेट के और चावल में रख दो, कोई अनाज में रख दो, गर्मी दे दो, तो आपने 50 आम रखे तो क्या एक साथ पकेंगे? तो अगर वो कृत्रिम गर्मी से पके हैं तो एक साथ क्यों नहीं पके? इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब जिसके पकने का स्वकाल था तब वो पक गया, कोई आम दो दिन में पक जाता है, कोई चार दिन में पक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब उसको वृक्ष से तोड़ा गया था तब उसमें कितनी कचास थी, वो उसकी योग्यता के हिसाब से वो उतने समय में पकेगा। इससे सिद्ध होता है कि कृत्रिम गर्मी सभी आमों को एक जैसी मिलने पर भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने अपने स्वकाल में सभी आम पकते। अकाल तो काल से भिन्न समवाय बताने के लिए कहा गया है, ये इसमें खास बात है, परंतु निमित्त की को मुक्त करके काल को गौण करके कहा जाता है कि आम गर्मी से पके, ये अकाल ने का कथन है। कार्य तो जब होना होता है उसकी योग्यता अनुसार तभी होता है, तभी प्रयत्न होता है, तभी पुरुषार्थ होता है, वो कार्य स्वयं होनहार है, और तभी बाह्य अनुकूल पदार्थ को निमित्त कहा जाता है। हर पदार्थ निमित्त नहीं होता, जैसे देखो जिन मंदिर है जिन वाणी है अपने में सम्यक्त का निमित्त है कि नहीं? पहले जी बताओ तुम्हें सम्यक्त है कि नहीं है? सम्यक्त हो नैमित्त कार्य तो उसको सम्यक्त का निमित्त कहो, सम्यक्त जिसको जो भाव होगा उसमें वो निमित्त कहलाएगा, निमित्त तो आरोपित है ना, आपको शुभ भाव हुआ भक्ति का भाव उछला तो उसमें निमित्त बन गई। कदाचित कोई आपके परिणाम खराब होने वाले हो और आपको कसाय आ जाए, इतनी जल्दी अभिषेक क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, मूर्ति की सफाई ठीक से नहीं की, तो क्रोध में निमित्त बन गई। निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है, ये तो सिद्धांत है ना, खेमचंद भाई बोस सिखाते थे हम लोगों को। तो ये इसमें एक पॉइंट और है बढ़िया, अकाल से आशय समय से पहले कार्य हो गया ऐसा नहीं है, ये गुरुदेव ने नए प्रज्ञापन में बहुत खोल खोल के लिखा है। अन्य समवायों को काल से भिन्न अकाल शब्द से संबोधित किया गया है। अब जरा विचार करो समय से पहले का क्या अर्थ है? इसको यूं समझोगे, एक ट्रेन यहां नासिक रोड स्टेशन पर सुबह 10 बजे आई, बताइए वो लेट है कि समय के पहले है कि राइट टाइम? कैसे कहोगे आप राइट टाइम? जब तक उसका शेड्यूल टाइम जो रेलवे टाइम टेबल ने फिक्स कर रखा है वो अगर आपको मालूम होए तो आप कह सकते हो कि ये लेट है कि राइट टाइम, यही है ना बेस उसकी। तो कोई भी कार्य कब होना है वो टाइम टेबल तो केवली के ज्ञान में लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि कब होना है। कि तुम कहने वाले होते कौन हो गए समय के पहले हो गया, समझ में आया ना? तो वो तो हमारी कल्पना में हमने मान रखा था कि एक बिल्डिंग, बोलो रमेश भाई, अपन प्लानिंग करते हैं कि ये काम 3 साल में हो जाने चाहिए, तो बोलो हमने सोचा था 3 साल में होना चाहिए, केवली से पूछो तो वो बताएंगे कितने साल में होगी, तुम्हारा प्रयत्न कितना काम में आएगा। हमने देखो समय से पहले का क्या अर्थ है, जब भी कार्य होगा, सुनना ध्यान से, पढ़ना भी अगर पुस्तक है तो, जब भी कार्य होगा तब कोई न कोई समय तो होगा ही, वही उसका समय
जो आया वही राइट।
तो फिर वो समय पर ही हुआ क्यों ना माना जाए? हमने अपनी कल्पना में उस कार्य का कोई समय निर्धारित कर रखा था, उस अपेक्षा हम उसे समय से पहले या विलंब से हुआ कह देते। इस प्रकरण पर विशेष जानकारी के लिए ज्ञान स्वभाव, गेय स्वभाव, क्रमिक पर्याय निर्देश का आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये कोई अच्छा, एक और, कोई काम सुकाल में होता है और कोई काम आगे पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं है, पर ये एक क्लियर बात है इसमें।
इसका मतलब सब काम सकल में होता है?
बिल्कुल, सब काम जड़ का, चेतन का, ज्ञानी का, अज्ञानी का। पर मजे की बात तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा? काल का निर्णय करके तुम्हारी कर्ता बुद्धि टूटे और ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि जमे, इसका नाम पुरुषार्थ।
उसी का भी
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में गुरुदेव ने मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ सिद्ध किया। उसे मैं इस भाषा में बोलता हूँ, जैसे सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ना, अब प्राइवेट, अब दूसरा हो गया मामला। तो गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का पुरुषार्थीकरण कर दिया। उन्होंने बताया कि इसमें मुक्ति का सच्चा पुरुषार्थ किस प्रकार है, और जो कहे पुरुषार्थ उड़ जाता है तो भाई एक अपेक्षा से तेरी बात भी सही है। केतन भाई, कौन सा पुरुषार्थ उड़ जाता है? कर्तृत्व बुद्धि का मिथ्या पुरुषार्थ उड़ जाता है, तो उसको उड़ाना है कि रखना है? अभी इसमें काल, देखो काल के सामने पुरुषार्थ नहीं खड़ा किया, काल के सामने अकाल खड़ा किया, और फिर एक जोड़ा और लाए, पुरस्कार ने और दैव ने। अब इसके उदाहरण देखना, आत्मद्रव्य पुरस्कार ने से है वो पुरुषार्थ है, बात पुरस्कार बोला है उसको, पुरस्कार जैसे वो भावक का बता रहे कुंभकार, वैसे पुरस्कार कुंभम करोति इति कुंभकार है, ऐसे जो पुरुष का कार्य है वो पुरस्कार, पुरुष माने आत्मा, पौरुष, जिसे पुरुषार्थ द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य सिद्धि वाला है। और देव ने से जिसे पुरुषार्थवादी द्वारा नींबू का वृक्ष या मधु छत्ता प्राप्त हुआ और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के अचानक माणिक प्राप्त हो गया, ऐसे दैववादी के समान अयत्न साध्य सिद्धि वाला है। हजूर देखो साहब, भाग्य का भी महत्व है और पुरुषार्थ का भी महत्व है। ये भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ये जरा समझने की बात है। उदाहरण तो इसमें ऐसा दिया है कि एक व्यक्ति ने मेहनत करके एक नींबू का वृक्ष लगाया, उसको बराबर उसकी सेवा करी, खाद पानी दिया, और फिर उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया, ख्याल में आया ना? तो या उसने प्रयत्न करके वो छत्ता बनाया और उसमें से शहद मिला, तो मेहनत का फल मिला। अब किसी ने समझ लो उसका वो वृक्ष खरीद लिया, और पहले ऐसी कहानियां बहुत चलती थी कि कोई रानी का हार पड़ा था या घर में मणि पड़ी थी तो एक पक्षी उठा के उसको ले गया, वहां छत्ते में डाल दिया, तो उसने उसको बिना ही मेहनत किए वो मिल गया। ये पुराने उदाहरण है। मैं आज के संदर्भ में ये बात कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया था? बिल्कुल दैव ने से प्रधानमंत्री बने। जिनने पुरुषार्थ किया उनका नंबर ही नहीं आया, दो चार तो चले गए ऊपर, किसी को राष्ट्रपति बना दिया, कोई चले गए, समझ में आया ना। और उनने सोचा भी नहीं था, 2004 की बात कहता हूँ, उस समय देवलाली में ही शिविर था गर्मी के दिनों में, तो अखबारों में आया था। खैर वो ज्यादा उसको लंबाना नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मेरे बारे में सोचा जा रहा है। तो उस लाइन के वो आदमी नहीं, वो तो अत्यंत सज्जन पुरुष हैं, ये उन जैसों का काम नहीं है, हमारा भी काम नहीं है। लेकिन वो बन गए दैव ने से। देखो चक्रवर्ती यदि मना करे, भरत ने मना किया, जबन कहते ना चक्र चला दिया, तो मारने के लिए चक्र चलाया था, ऐसा नहीं है। कोई ज्ञानी किसी की हत्या के लिए ऐसा चक्र नहीं चलाते हैं, और इतने मूर्ख भी नहीं होते जाने नहीं कि ये चरम शरीरी है, इन पे चक्र नहीं चलेगा, ये कुटुंब के हैं, इन पे नहीं चलेगा। चक्र माने समझ लो चक्रवर्तित्व का प्रतिनिधि सेना का। और जब वो युद्ध में हार गए तो उन्हें कहा कि तुम अब तो बाहुबली ही राज करेंगे, वही चक्रवर्ती बनेंगे, तुम जाओ उनके पास, तुम उनकी सेवा में रहो। तो वो जाके और प्रदक्षिणा देके आ गया, क्योंकि पुण्य किसका था। तो बाहुबली युद्ध में जीत कर भी चक्रवर्ती नहीं बने,
जीत कर भी नहीं बने।
हाँ, युद्ध में जीत कर भी चक्रवर्ती नहीं बने। इसमें बहुत माल निकलता है इन पौराणिक घटनाओं में भी। देखो क्रमबद्ध पर्याय, पर्याय की स्वतंत्रता, जब जीत गए फिर बैराग्य आया, अरे पहले ही आ जाता तो जे कहानी क्यों जुड़ती, युद्ध के बाद उदाहरण क्यों बनता कि दो भाई लड़ पड़े इतने बड़े, ध्यान में आए ना। बाकी के जो 99 भाई थे वे तो दीक्षा ले गए, तो बाहुबली को मालूम नहीं पड़ा होगा, तो वे भाई दीक्षा ले रहे हैं, बैराग्य नहीं आए। फिर उन्हें तो बोल रहे भाई पिताजी ने दोनों को दास दिया है, मैं क्यों दूं, मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता। वहां तो ऐसे परिणाम थे। और जब चक्रवर्ती बनने का मौका आया फिर दीक्षा लेने का भाव आ गया, ध्यान में आए ना। और भरत ने न्याय से कोई तय ये हुआ था कि जो युद्ध में जीतेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, मैं हार गया तो मैं नहीं बनता, तो रोक पाए अपने आप को। वो उदय में जो आया है वो आएगा ही आएगा, ये कहने का मतलब है।
एक हो रहा था ना लक्ष्मण जी को चंद्रास खड़ग,
हाँ वो 12 साल शंभु कुमार है। इसमें गुरुदेव ने पुरुषार्थ का क्या अर्थ किया, देखो भगवान आत्मा की दुखों से मुक्ति यत्न साध्य है या अयत्न साध्य, इस प्रश्न का उत्तर इन नयों के द्वारा दिया गया है। भगवान आत्मा में अंतर्मुखी पुरुषार्थ द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता, देखो पुरुषार्थ द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता, मैं तो कहता हूं किसी पर्याय को पुरुषार्थ कहना और किसी अन्य पर्याय को उस पुरुषार्थ के अनुसार कार्य या फल कहना, इस संग्रहण का कथन। सम्यक दर्शन क्या है, कार्य है कि पुरुषार्थ, तत्व निर्णय क्या है, पुरुषार्थ नहीं तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करो। टोडर मंजी ने कहा कि तेरे हाथ में तो पुरुषार्थ करना है तो तत्व निर्णय करो, उससे तुम्हारा मोह मंद होएगा, उससे सम्यक होएगा, वो तो पुरुषार्थ के नाम पे तत्व निर्णय करा रहे। तो तत्व निर्णय भी एक ज्ञान की पर्याय है कि नहीं, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो मोक्ष मार्ग में उपशम क्षयोपशम या छायक भाव रूप ना हो, और उपचार से व्यवहार से स्वभाव रूप पुरुषार्थ, कार्यों को भी पुरुषार्थ कह देते हैं व्यवहार से, तो है तो वे सब कार्य, लेकिन किसी पर्याय का किसी पर्याय को कारण कहना पुरुषार्थ कहना वो सब उपचरित कथन है। वास्तव में तो वो पर्याय के काल में ही उस पर्याय में ही उस प्रकार का पुरुषार्थ बैठा हुआ है, जिसमें कार्य उत्पन्न हुआ है उसमें ही वो पुरुषार्थ हुआ है। तो मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता, और मजे की बात यह है जैसे काल ने बताया था ना, सुनना ध्यान से, स्वकाल में कार्य होने की योग्यता ये स्वभाव है, स्वभाव नाम का धर्म ख्याल में आया ना, और ये काल नाम का स्वभाव ये सब पढ़ा था ना अभी, ऐसे ही पुरुषार्थ से आत्मा की कार्य सिद्धि होवे ऐसा स्वभाव पड़ा है। स्वभाव में भी सारे धर्म स्वभाव रूप हैं, सब धर्म स्वभाव रूप हैं, और उसी समय कर्म क्षय का नैमित्तिक कार्य होने की योग्यता है। इधर पुरुषार्थ है और उधर कर्मों का क्षय है, तो कर्मों का क्षय होना उसको दैव कहा है, दैव ने समझे। किस्मत, किस्मत क्या होती, भाग्य क्या होता है, समझ में आए ना। लोक में ये विवाद बहुत चलता है कि पुरुषार्थ मुख्य है कि भाग्य की मुख्यता है। तो देखो भैया, एक 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 सरल लौकिक समाधान है, संयोगों में कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, संयोग वियोग ये सब कर्मोदय के अनुसार होते, कलश है अपना, सर्वम सदैव नियतम भवति सुखी। ये आत्महित के लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसमें भी भाग्य माने कर्मों की व्यवस्था है कि कर्म का उपशम होएगा, सही उपशम होएगा वो दैव, गुरुदेव ने दैव में उसको लिया ऐसा। इन दोनों धर्मों को अलग अलग उदाहरणों से इष्ट संयोग के संदर्भ में समझाया गया है, परंतु सिद्धांत में एक ही कार्य में दोनों नए घटित होते हैं। एक अपेक्षा से देखो वो कार्य, खासकर आत्मा के कार्य की बात है, पुरस्कार यानी पुरुषार्थ से हुआ है, और दूसरी तरफ से देखो तो वही कार्य। देखो सम्यक दर्शन कैसे होता है, अपने आप पुरुषार्थ प्रधान भाषा है, आत्मा में अहम करने से, अंतर्मुखी दृष्टि करने से, स्वभाव की प्रतीति करने से, तो अपन इस तरफ से बात करते हैं उपादान की तरफ से, सामने वाले अरे वाह दर्शन होगा, उपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो वो दैवी की तरफ से बात करते, और होते दोनों हैं। ये इधर अंतर्मुखी पुरुषार्थ होता है, उधर कर्म का उपशम होता है, कर्म का उपशम कर्म में होता है, जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है। देखो छपक श्रेणी के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होता है, यहाँ छपक श्रेणी को पुरुषार्थ बोला केवल ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन छपक श्रेणी भी एक अपने स्वकाल में हुआ, वो भी कार्य है ना, समझ में आया। लेकिन केवल ज्ञान के संदर्भ में उसको पुरुषार्थ बोला, तो ये पुरस्कार ने का कथन है। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हुआ ऐसा कहना दैव ने का कथन है। मैंने वो नए प्रज्ञापन का इसमें कोटेशन दिया है, 215-216 पेज गुजराती नए प्रज्ञापन। देखो किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और किसी को दैव से यानी भाग्य से, इस प्रकार भिन्न भिन्न आत्माओं की ये बात नहीं है, प्रत्येक आत्मा में ये दोनों धर्म ही एक साथ रहते हैं, अतः दैव नय के साथ अन्य नयों की विवक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दैव नय का ज्ञान सच्चा कहा जाएगा। पुरुषार्थ से मुक्ति हुई ये न कहकर कर्मों के टलने से मुक्ति हुई अथवा दैव से मुक्ति हुई ऐसा कहना दैव नय है, उसमें भी चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ में है ही है। और सबसे बड़ी बात यह है, चारों समवायों का यथार्थ स्वरूप जानना, जानना निर्णय करना प्रतीति करना उसके फल में स्वसन्मुख होना, ये पुरुषार्थ मुक्ति मार्ग के संदर्भ में। वैसे देखा जाए तो दुनिया में कोई कार्य बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, अरे नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, हेल में वो विपरीत पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ माने उसमें भी उस जीव का समझ लो परिणामों में बल तो लगेगा, हिम्मत वाले जाते हैं नरक में, हर कोई नहीं जा सकता है। गुरुदेव कभी कभी मजाक करते ना, वो तो उनसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक श्वेतांबर साधु ने एक बहन को पूछा, तुमको रत्न प्रभा जाना है महाराज, हम जैसे पापी लोग कहाँ रत्न प्रभा जाएंगे, वहां तो आप जैसे धर्मात्मा। तो वो अशुभ परिणामों में भी संकलेश रूप विपरीत पुरुषार्थ है। एक देखो संयोगों की प्राप्ति उदयाधीन है, इसमें एक बहुत बढ़िया काव्य दिया है पंडित साहब का, पापोदय में चाह व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी हो। पाप का उदय होगा तो कोई भी इच्छा करो फालतू है, क्योंकि वो कितनी इच्छा करो वो नहीं होने वाली, और जो होने वाला है उसकी तुम्हें इच्छा नहीं होगी, उससे उल्टी होगी। और पुण्योदय में चाय व्यर्थ है सहज पने मन मान, ये दैवने का कथन है। और बाकी इसमें वो भाई साहब ने कहा ना वो पद्म पुराण का, वो इसमें लिखा है नीचे पद्म पुराण में समागत शंभु कुमार वाला, वो भी इसमें लिखा है। ज्यादा मैं अभी लंबा नहीं करना चाहता। अब देखिए 51 पेज पर जो दो पैराग्राफ है वो पढ़ने लायक है। जब कार्य होता है तब ये पांचों ही समवाय नियम से होते ही हैं, और उसमें उक्त आठों नयों के विषय भूत आत्मा के आठ कर्मों का योगदान भी समान रूप से होता है। तात्पर्य सॉरी आठ आठ धर्म होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो एक एक धर्म को बताता है ना, कर्म तो दैव में गया। तात्पर्य यह है कि आत्मा की सिद्धि के संपूर्ण साधन आत्मा में विद्यमान, पुरुषार्थ भी दैव भी सारी योग्यता, मतलब आत्मा के परिणामों के निमित्त से कर्मों का क्षय होवे ऐसी योग्यता आत्मा में, कर्म क्षय में निमित्त भूत परिणाम आत्मा करे ऐसी योग्यता आत्मा में, वो दैव नाम का धर्म हो गया। गजब बात, बात कर्मों की तरफ से लेकिन योग्यता आत्मा में है, धर्म आत्मा का है। वस्तु स्थिति ये है कि जब परम पारिणामिक भाव रूप देखो आठों जो धर्म है ना उनका समन्वय इसमें किया, एक साथ उनको सेट किया। वस्तु स्थिति ये है कि जब परम पारिणामिक भाव रूप नियत स्वभाव के आश्रय से ये भगवान आत्मा अपने पर्याय रूप अनियत स्वभाव को संस्कारित करता है, वाह किसके आश्रय से और किस में संस्कार डालना है, नियत स्वभाव के आश्रय से, तो नियत स्वभाव स्वभाव है, आश्रय पुरुषार्थ है, और पर्याय में की धारा पलटी उसकी योग्यता से तो उसको संस्कार कहा गया। ये भगवान आत्मा अपने पर्याय रूप अनियत स्वभाव को संस्कारित करता है, तो संस्कार होने की योग्यता अनियत स्वभाव में, जो पहले देखे आए अपन पर्याय स्वभाव में, तब स्वकाल में कर्मों का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति होती ही है। तात्पर्य यह है परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा को केंद्र बनाकर जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र परिणमित होते हैं, जब तब ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव होकर अनंत सुख स्वरूप सिद्ध दशा प्रकट हो जाती, और इसमें ही उक्त आठ कर्म या आठ नए व पंच समवाय, तो आठ धर्म लगाना था, कर्म की बात तो देव में गई, प्रिंटिंग मिस्टेक, आठ धर्म आठ नए और पांच समवाय ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। ये दो प्रकरण, इसमें दो चार प्रकरण हैं जिसको मैंने टारगेट बनाया था, यद्यपि मेरे पास दो सेशन हो रहे हैं अभी, तो बाकी के नयों में जो महत्वपूर्ण होंगे उनकी अपन यथायोग्य की चर्चा करेंगे, लेकिन जो जो लक्ष्य निश्चित किया था थोड़ा सप्तभंगी संबंधी नए, थोड़ा ये निक्षेप संबंधी और ज्ञान गेय व्यवस्था संबंधी, पांच समवाय संबंधी, विशेष विस्तार तो आप नए प्रज्ञापन में पढ़ें, नए चक्र में पढ़ें, अभी अपन यहीं विराम लेते हैं।